भाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, दिल में सदा यह गीत गाते हो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कि कभी कभी गीत बजता है और कभी बंद हो जाता है। सदा एक रस गीत बजता है या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो। सदा भाग्य के गीत क्यों गाने हैं? क्योंकि बाबा ने हमारा भाग्य बनाया है। तो भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया है, ऊंचे थे ऊंच भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे थे ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा ही बनाएगा। तो यह नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। तो फिर बाबा ने कहा कि जो ये भाग्य आपका किसने बनाया है? ऊंचे थे ऊंच बाप ने बनाया है।
माइक थोड़ा दूर रखो।
कितने जन्मों के लिए बनाया है? जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया है। सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर बाबा ने कहा ऐसे आप भाग्यवान रहे हो। 21 जन्म पूज्य बनते हो, फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं। ये सब भाग्य के बारे में बाबा बता रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है? चैतन्य में, मतलब स्वर्ग में चैतन्य पूज्य राज्य अधिकारी बनते हो और द्वापर से जड़ चित आपके पूजे जाते हैं। तो सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी आपने यादगार देख रहे हो ना, एक तरफ चैतन्य में आप हो, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र है। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है ना, ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हो। तो सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं होंगे, लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र है। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तो तीनों ही काल सामने हैं। तो यहाँ पर जो है बाबा ने सबसे पहले बताया कि हमको क्या करना है, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होना है। और सदा हर्षित हम तभी रहेंगे जब हम बार बार अपने भाग्य को स्मृति में लाएंगे कि हमारा भाग्य किसने बनाया है। और बाबा ने यह भी पूछा कि जब आप वह आपका भाग्य है, आप श्रेष्ठ भाग्य आपको मिला है, तो उसमें बाबा ने कहा कि जैसे हमेशा ये गीत गाते हो आप, या कभी कभी गाते हो, या आपका जो गीत है वो एक रस रहता है, या कभी चलता है, कभी बजता है, या कभी बंद हो जाता है। तो ये आपको देखना है कि हम मतलब भाग्य के गीत सदा गाते रहे, और ये देखना है कि हमारा भाग्य किसने लिखा है। स्वयं भगवान हमारा भाग्य बनाने आए हैं। तो जब डायरेक्ट भगवान से हम अपना भाग्य बना रहे हैं तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। और यहाँ तक पहुंचने के लिए हम सबको मालूम है कि हमारा यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने कितनी पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है। बाबा ने तो हमें सहज ही पकड़ लिया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, हमारे भाग्य की लकीर को और लंबी बनाने के लिए उन्होंने हमें हाथ में कलम दी है कि आप अपना जितना भाग्य बनाना चाहें बना सकते हैं। सबसे पहले तो बाबा ने हमें क्या किया है कि हमें बाप बनकर पालना दे रहे हैं, जो कि किसी भी जन्म में किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। तो जब स्वयं भगवान हमारा भाग्य बना रहा है, मतलब हमारी पालना कर रहा है, और ऐसी पालना कर रहा है जो कि कल्प में किसी भी मनुष्य आत्माओं की नहीं होती है, और टीचर बनकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि उस पढ़ाई से हम क्या होता है, जो भी समझाता है बहुत सहज समझाता है, और दुनिया वाली पढ़ाई में तो क्या होता है, हम उसको पढ़ने से भारी हो जाते हैं, लेकिन जो बाबा की पढ़ाई है वो हमें हल्का बनाती है, और इतनी सहज पढ़ाई है जैसे कि हाँ एक घंटे की पढ़ाई है।
पूरी
लेकिन
उम्र की पढ़ाई है
बाबा ने कहा कि जो ये सहज पढ़ाई है बहुत ही, इसमें दो ही चीजें हैं, आप और बाप में सारा जो है चक्कर आ जाता है, सृष्टि चक्र आ जाता है, उसमें कल्प वृक्ष आ जाता है। तो है बहुत ही सहज पढ़ाई, और इसको हमें मतलब सहज रीति लेते हुए भी, लेकिन मेहनत भी है, बाबा ने तो सहज कह दिया। और साथ में हमें जो सतगुरु के रूप में उसके रोज वरदान मिलते हैं, तो तीनों चीजों से देखा जाए ऐसे कल्प में किसी को वरदान भी रोज नहीं मिलते हैं, तो बाबा हमें रोज वरदान देता है सतगुरु के रूप में। तो जो हमें वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता है, सर्व खजानों का मालिक बनाता है, तो जब वो डायरेक्ट हमें अपना बना के हमारी पालना कर रहा है, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने हमें क्या किया है, रचा है, तो शिव वंशी से हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया है। तो ये जब हम अपने और भी भाग्य, बहुत सारे बाबा ने बातें बताई है भाग्य से संबंधित, लेकिन ये तो जस्ट मैंने दो तीन चीजें बताई है, तो ये भी हमें याद रहे तो हमें सदा क्या होगा, जीत हमारे, हम
बचता
गाते
रहेगा।
रहेंगे बजते रहेंगे। फिर बाबा ने साथ में ये बोला कि ये तो बात हुई आपके गीत गाने की, सदा हर्षित रह के गाना है, लेकिन फिर बाबा ने ये भी कहा कि ये भाग्य तुम्हें दिया किसने है, किसने दिया है, स्वयं भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य बनाया है, और जो स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहा है वो स्वयं कितना ऊंचे से ऊंच है। तो अगर वो स्वयं इतना ऊंचे से ऊंच है, तो हमारी हमको भी कैसे बनाएगा, उतना ही ऊंचा बनाएगा। फिर साथ में बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा भाग्य जो है कितने समय कितने जन्म के लिए है,
लिए
बाबा ने बोला 21 जन्म के लिए है क्या, या सारे काल के लिए है। तो हमारा जो भाग्य बाबा ने बनाया है खाली 21 जन्म के लिए नहीं है, सारे कल्प का हमारा भाग्य है। और उसमें भी बाबा ने कहा कि जो पहले हमको क्या बनाया बाबा ने, पहले हमें चैतन्य राज्य अधिकारी बनाया, मतलब चैतन्य में बाबा ने
पूज्य
हमें ये बनाया है
पूज्य
पूज्य, फिर बाद में वो हमें पुजारी, द्वापर से जो पूज्य पुजारी जो आत्मा है उन्होंने भी हमारी पूजा की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दोनों आपके सामने है, चित्र भी और चैतन्य भी, और यही विशेषता है। जैसे और किसी को अगर मालूम है कि मेरा ये चित्र या जो चैतन्य है या जो मैं ये बनने वाला हूँ, किसी को अगर मालूम होगा तो हो सकता है पुनर्जन्म में मालूम हो, लेकिन इस एक ही जन्म में दोनों चीज सामने हो वो नहीं है। तो वो सिर्फ हमें यहाँ बाबा ने कहा कि दोनों चीज तुम्हारी एक जन्म में साथ में है। फिर बाबा ने पूछा कि माता है आप खुश हो अपने भाग्य को देखकर, ब्राह्मण जीवन खुशियों का जीवन है, तो क्या आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो। तो उसमें बाबा ने कहा जो सदा खुश रहते हैं, सदा बाबा का जो वरदान है वो सदा के लिए है, मतलब कभी कभी का नहीं है। जैसे बाबा कहता है कभी दुख परेशानी आई तो उस समय क्या खुश हो रहते हो आप, तो उस समय भी हमें खुश रहना है। बाबा का जो वरदान है वो सदा का है, कभी कभी का नहीं है और अभी अभी का है। तो ये भी कहा साथ में बाबा ने कि हमेशा हर घड़ी खुश रहना है, और जो खुश नसीब होते हैं उनको हमेशा क्या अनुभव होगा कि वो कौन से, वो जो है अभी अभी वाले क्या होंगे, उनका पूरा भाग्य बनाएंगे, और कभी कभी वाले आधा। तो उसमें फिर बाबा ऐसा जैसे भक्ति में भी कहते हैं कि जैसे जब ब्रह्मा जी बुद्धि बांटते हैं तो आप क्या सोते हो सुबह,
भाग्य बांटते हैं,
बुद्धि बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। तो जो आधा
बुद्धि बोलते हैं,
जो आधा आधा लेने वाले क्या होगा, आधा लेंगे तो मतलब पूरे करे समय प्राप्त नहीं किया है। और इसलिए जो सुबह के समय हमको क्या करना होता है कि अपने भाग्य की जो लकीर अपने आप बनानी है। भाग्य तो बाबा ने हमें दिया ही है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उसको कितना लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि भाग्य की कलम तो आपके हाथ में ही है। फिर बाद में ऐसा नहीं बोला बाबा आपने भाग्य दिया और हमने, हमें कुछ नहीं। मेरा बाबा बोलेगा आपको भाग्य की कलम मैंने दी थी और ये कहा था जितना लंबा खींचना है खींच लो, फिर कुछ ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मुझे नहीं बोलना।
जितना भाग्य ने उससे ज्यादा ले लिया।
नहीं, कभी कभी क्या होता है सुबह के टाइम पे ना बाबा जी बच्चों के हाथ में कलम होती है तो वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ कर लेते हैं।
तो नींद तो होती है
तो वो जो नींद जो लाइन गलती कभी ऊपर नीचे होती है तो वो फिर सीधी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सोने के कारण ही ऐसा होता है।
नहीं,
हमारे हमारा ईसीजी तो बाबा ने देखा है कि हमारी हमारी लाइन सीधी बिंदी से शुरू करे और लाइन ड्रॉ करे जितना लंबा खींचना है खींच ले, कितने जन्मों का कितने बाबा ने आपको दिया।
आप तो आर्टिस्ट है, सीधी खींच सकते हो।
उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि ये कभी कभी शब्द समाप्त कर दो और कभी कभी नहीं अभी अभी हर घड़ी खुश रहना है। आपका स्लोगन क्या है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे?
खुश
बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर साथ में बाबा ने ये कहा कि जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की एक बार बाबा ने अवैध मोड़े में निशानियां बताई थी, और यहाँ बाबा ने कहा कि भगवान पढ़ाने आए और उसके बाद भी सूर्यवंशी की जगह चंद्रवंशी बन जाए तो बाबा को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया था कि तुम सूर्यवंशी बनो और बन गए चंद्रवंशी। तो बाबा साहब ने ये भी पूछ रहे कि आप सूर्यवंशी सिर्फ कहते हो कि हम बनेंगे बनेंगे और चले जाओ चंद्रवंशी में, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो बाबा ने इसे पक्का कराया कि सूर्यवंशी ही बनना है। और सूर्यवंशी बनने के लिए कुछ निशानियां जैसे बाबा ने बताई थी क्या होगा, सूर्यवंशी होंगे और सर्व संबंधों से बाप के प्यार में लंबी होंगे, सदा ही वो मतलब मन बुद्धि से बाबा को सामने रखेंगे, और उनका जो है त्याग कैसा होगा, सर्वंश त्यागी होंगे,
बादल आएंगे।
हाँ, उनके सामने बादल मतलब आएंगे और जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो उनके प्रकाश को रोक दे, उनके अंतर क्या होगा फुल प्रकाश होगा, मतलब कलाएं जैसा होती है ना चंद्रमा में उस टाइप से नहीं होगा। तो चीजें ऊपर नीचे उनके साथ ऐसा होगा कि कुछ है ही नहीं, और सबसे बड़े महात्यागी होंगे, सर्वंश त्यागी होंगे, किसी भी विकार के मतलब उसके वश नहीं होंगे और हमेशा महादानी होंगे और निर्वाण होंगे, निर्माण होंगे। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो हमें बनना नहीं है, ऐसी बात ही नहीं करनी है।
लेकिन पता तो होना चाहिए क्या हो
पता
ऐसा नहीं बाद में पता चले तो हम तो वही है।
नहीं पता तो है लेकिन हम क्यों सोचे,
सोचना नहीं है वो चीज है।
फिर वो दो रास्ते हो गए ना, जैसे वो माताओं के लिए, जैसे इसमें बाबा ने माताओं के ऊपर भी कहा है ना कि मतलब कि कभी कभी खुश रहती है और ये मतलब मोह उनमें ज्यादा होता है। तो उसमें बाबा ने मोह के बारे में जो एक 79 की आई थिंक मुरली है उसमें बाबा ने माताओं से जब बात की थी اس میں انہوں نے ہم کو یہی کہا تھا کہ آپ کو جو آپ کی جو شکتی ہے وہ آپ کو پہچاننی ہے, کیونکہ جیسے مندروں میں ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے تو ان کو وہ ان کو اپنے اس سوروپ کو جاننا ہے, وہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو اپنے شریر بھان میں رہنے کے کارن سے وہ جو ہے اپنی شکتی کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو من بدھی سنسکار سے سمرتی سوروپ بن کر کے کیا کرنا ہے, اپنے کو اسٹرانگ بنانا ہے, شکتیشالی بنانا ہے. کیونکہ جب سارے مندروں میں ان کی پوجا ہو رہی ہے تو وہ یہاں موہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے کو اپنی شکتیوں کو بھول گئے ہیں. تو اس طرح سے بابا نے اس میں بتایا تھا, اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو موہ کا جو بیج ہے وہ سر مطلب سمبندھ ہے کسی سے بھی. جو جیسے کوئی کسی میں موہ رکھتا ہے تو اس کا ریزن جو ہے سمبندھ ہوتا ہے. تو بابا نے کہا کہ اس بیج کو آپ کو کیا کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اور آپ کہتے ہو کہ آپ کو دل میں بٹھایا ہے, مطلب جس سے سمبندھ ہوتا ہے اس کو دل میں بٹھاتے ہیں, اور اس کو دل میں بٹھانے کے کارن کیا ہوتا ہے, دکھ دکھ زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے وہ گانا بھی ایک ہے نا کہ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے تو چہرہ یوں ہے. تو جس کو دل میں بٹھایا وہ آپ کے دل سے ختم کرتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, تو کوئی آپ کے دل کے ٹکڑے نہ کرے, اس سے اچھا ہے کہ بابا کو اپنے دل میں بٹھا لو. اور بابا کو دل میں بٹھائیں گے تو سارے سنبھال وہی کرے گا. اور اس میں بھی جیسے کئی ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ بابا ہم تو ادھر بھی چل رہے ہیں, ادھر بھی چل رہے ہیں, مطلب ادھر بھی توڑ نبھا رہے ہیں اور آپ سے بھی ہم یہ کر رہے ہیں,
دونوں لڈو پکڑے.
تو پھر بابا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا آپ دونوں جگہ چلیں گے, توڑ بھی نبھا رہے ہیں اور میرے ساتھ آپ کا مطلب آپ پھنسے بھی ہوئے ہو تو کیا ہوگا, دو منزل پر پہنچنا, مطلب دو راستے ہو جائیں گے تو آپ منزل پر نہیں پہنچ گئے, منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے, ایک ہی راستے پہ بیٹھنا ہے, مطلب جو بیج ہے اس کو ہی پکڑ کے, اس کا مطلب سمبندھوں کا جو بیج ہے اس کو کیا ہوگا, اگر بابا سے سمبندھ جوڑا ہے تو اس سے سمبندھت آپ کا جھاڑ بنے گا. اور دنیا میں کسی کو اگر سمبندھی وہ دل میں بیٹھا ہے تو اس کا جھاڑ کیسا ہوتا ہے, مطلب پورا دکھ اشانتی کے کارن آ جاتے ہیں. تو ان ماتاؤں کے بارے میں ایک بار بابا نے مطلب کہ ان کو نرمولی بنانے کے لیے کہ ان کا منہ سب سے زیادہ ہوتا ہے.
یہ ماتاؤں کے لیے دس ہمارے لیے نہیں, یہ
ماتاؤں نہیں, بابا نے اس نے بھی کہا نا کہ پانڈووں کو بھی چنتا رہتی ہے کیا کہ اگر کمانا ہے کھلانا ہے, تو بابا نے کہا وہ یہاں پر تو نہیں. بابا نے ڈبل ودیشیوں سے بھی پوچھا, جیسے ماتا کو پوچھا تو ان کو بھی پوچھا آپ کو کیا بننا ہے, کہ سوریہ بننا ہے کہ چندرونشی بننا ہے. تو جو بھی آپ کہیں فلک سے کہ ہمیں تو سوریہ ہی بننا ہے اور ہم نہیں بنیں گے تو کون بنے گا, کیونکہ یہ تینوں کالوں کا ہمارے سامنے یہ نشچت ہے کہ ہمیں ہی بننا ہے. پھر بابا نے بعد میں جو تیوہ پرشارتی ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں, ان کا جو اگر مطلب جو تیوہ پرشارتی ہوتے ہیں اگر ان کا ڈھیلا پرشارت ہوگا سادھارن پرشارت ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا, تو تیوہ پرشارتی مطلب انتم گھڑی ہونے سے اس کو تیوہ پرشارت کرنے پڑے گا, یہ اس کو سمرتی رہے گی نا. اور اگر انتم گھڑی ہے کر کے وہ سوچے کہ ابھی سادھارن پرشارت کر لیں گے تو کیا ہوگا. تو اس لیے بابا ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ جیسے یہ نہیں سوچنا کہ وناش ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے ہم چینج ہو جائیں گے, تو وناش کب ہوگا وہ نہیں دیکھنا ہے, لیکن ہماری انتم گھڑی کب ہو اس کے حساب سے ہمیں کبھی بھی ہمیشہ ایور ریڈی رہنا ہے اور تیور پرشارت کرنا ہے, سادھارن پرشارت نہیں کرنا ہے.
ایک بار پھر سے
کچھ تو میں سنا ہوگا. اچھا اس میں جو گروپ نمبر 3 میں ہر گھڑی انتم گھڑی سمجھتے ہوئے ایور ریڈی بنو, اپنے بھاگی کے گیت سدا گاتے رہو, تو سبھی اپنے بھاگی کو دیکھ سدا ہرشت رہتے ہو, دل میں سدا یہ گیت گاتے ہو کہ واہ میرا شریشٹھ بھاگی. کہ کبھی کبھی یہ گیت بجتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے, سدا ایک رس گیت بجتا ہے یا کبھی سلو یا کبھی
لائٹ چلی جاتی
تیز ہو جاتا ہے, सदा भाग्य के गीत गाते रहो। क्योंकि क्यों गाने हैं गीत?
स्वयं भाग्य विधाता ने भाग्य
बनाया। क्योंकि ये भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया, ऊंचे से ऊंच भगवान ने भाग्य बनाया। जो स्वयं ऊंचे से ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा। तो यह नशा और खुशी रहेगी, भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। और कितने जन्मों का भाग्य बनाया है? जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया है। सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे हो। 21 जन्म पूज्य बनते हो, फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं, तो वो चैतन्य पूज्य राज्य अधिकारी बनते हो। और द्वापर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं। सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी अपने यादगार देख रहे हो ना? एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरे तरफ आपके ही जड़ चित्र है। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देखकर खुशी होती है ना? ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हो। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखिए, यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो
पता नहीं,
भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं। लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र है। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। माताएं सदा खुश रहती हो कि कभी कभी रहती हो? भ्रामर जीवन अर्थात भ्रामर जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। भ्रामर बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए कि सदा खुश रहने के लिए? तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया, तो कभी कभी का नहीं दिया। कभी बाप ने कहा है क्या कि कभी कभी खुश रहना? कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं। सदा खुशी भव, सदा शांत भव। कभी कभी का वरदान नहीं होता तो क्या करना है? सदा रहना है ना, या कभी कभी ठीक है चलेगा। कभी कभी शब्द समाप्त कर दो। कभी कभी नहीं, अभी
बाद में नहीं।
हर घड़ी कहो अभी खुश है। आपका स्लोगन भी क्या है? अभी का स्लोगन है या कभी का है? अभी का है ना। जिस घड़ी कोई देखे, कोई मिले तो अभी अभी खुश नसीब, ऐसे अनुभव करे। कभी खुश रहने वाले, कभी खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे?
चंद्रवंशी।
सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो,
दोनों ही है। पहले तो बनेंगे सूर्यवंशी, बाद में वो
सूर्यवंशी हो पक्का।
पहले वो फिर वो।
बाबा ने कहा सूर्यवंशी हो पक्का, ये कहते हो सूर्यवंशी और वहां चंद्रवंशी बन जाएंगे। सदा सूर्यवंशी होना, भगवान के बनकर फिर भी चंद्रवंशी बने तो क्या किया? गायन है ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? अगर आधा लेते हैं तो आधा लिया था मतलब आधा सोए हुए थे,
आधे में जाएंगे।
आधा समय सोए हुए थे तभी नहीं लिया, तो पूरा भाग्य लेने वाले हो, आधा नहीं। तो डबल विदेशी कौन हो? सूर्यवंशी? एक भी चंद्रवंशी नहीं, पक्का सोच लिया? ऐसे ही तो नहीं कह रहे हो फलक से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? और कोई है क्या? तीनों काल के लिए निश्चय है। तो सबसे तीव्र पुरुषार्थी कौन है? तीव्र पुरुषार्थी हो या कभी ढीला कभी तीव्र, सदा तीव्र, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर साधारण पुरुषार्थी है और अंतिम घड़ी आ जाए तो धोखा हो जाएगा, इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही, फिर तैयार हो जाएंगे। अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी। तो डबल विदेशी एवर रेडी है, करना ही है। कोई काम रह गया है क्या? ब्रैकेट में लिखा है कि शायद म्यूजियम बनाना होगा, तो म्यूजियम बनाना होगा तो कोई भी बना देगा। आप तो एवर रेडी हो, म्यूजियम के बाद एवर रेडी होंगे। पूछ रहे होंगे बाबा से अपनी स्थिति सदा उपराम, अब भी जो होगा वो अच्छा। ऐसे रेडी हो या सोचना पड़ेगा कि यह कर ले यह कर ले, नहीं, सदा निर्मोही निर्विकल्प और निर्व्यर्थ। व्यर्थ भी नहीं, इसको कहा जाता है एवर रेडी। माताएं एवर रेडी हैं या थोड़ा थोड़ा मोह है? पोतरे धोतरे में मोह है, यह करना है यह संभालना है। पांडवों का मोह है कि जेब खर्च में मोह है, कमाना है खाना है खिलाना है। यह नहीं सोचते हो, न्यारे हो गए हो, या थोड़ा थोड़ा मोह है। नष्टो मोह अर्थात सर्व से न्यारे और बाके प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? हम ऊंचे से कुछ भाग्यवान हैं, सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। तो जो बाबा ने यहाँ पे तीव्र पुरुषार्थी कौन है, इसके अंदर भी जैसे जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उनका क्या रहता है, दृढ़ संकल्प रहता है उनका कि हमको कुछ भी करे उसमें दृढ़ता रहती है। जैसे देही अभिमानी बनने की दृढ़ता, और उनको हमेशा रहता है कि हम मनसा वाचा कर्मणा एक समान रहे। और हमेशा जो बाबा ने कहा उसको किया, तीव्र पुरुषार्थी। फिर उसको भी कहते हैं बाबा की, जैसे जो एक गलती एक बार हुई है वो रिपीट नहीं हो। और तीव्र पुरुषार्थी हमेशा क्या करेगा, सर्व संबंध बाप के साथ रखेगा,
रेडी होगा, दुखन
रेडी होगा, कभी कभी
दुखन
कभी कभी वाला नहीं होगा। तो ये सब चीजें बाबा ने थोड़ी थोड़ी जो याद है बताया,
अभी तो बताएंगे।
24 घंटे में क्या पुरुषार्थ किया
मैंने? नींद नहीं आई मेरे आंखों से, लग रहा मैं सो ही नहीं था।
24 घंटे में जरा नींद नहीं आई,
थोड़ी तो आई हुई।
दो रीजन थे, एक तो थोड़ा सा जुकाम हो गया था
जिसका टेंशन था,
टेंशन नहीं लेकिन था कि बस कुछ ना कुछ लिखते रहो पढ़ते रहो।
चिंतन क्या किया?
और बस जो भाग्य की बातें थी, जैसे अपने भाग्य के बारे में था कि मतलब मुझे कैसे भाग्य है मेरा बना, वो सब चीजें माइंड में आई। और योग कम हुआ क्या, लेकिन बाबा की बातें ही चलती रही कुछ ना कुछ।
व्यर्थ?
व्यर्थ तो था ही नहीं, तो खाना भी 2:30 बजे खाया था।
खाया
नहीं। हमारा एक से तीन व्रत होते हैं ना, तो एक से तीन में या तो आप खाना खा लो या आराम कर लो या आप स्व अध्याय कर लो।
स्वाध्याय
ये भी बाबा ने कैसा कैसा फिर भी बहुत सारी चीजें की, लेकिन मतलब कि अभी शायद मेरा 50% ही निकला, 100% में से।
तो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के बारे में कहा, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो निरंतर अपने भाग्य की स्मृति रखता है। इतना बड़ा भाग्य कि यहाँ पर ये हम ही हैं पूरे कल्प में जो कि चैतन्य में है पर जिनके चित्र की पूजा होती है। हम चैतन्य में है परंतु जड़ की पूजा, हम जड़ की पूजा हमारे सामने होती है, निर्जीव की सजीव के सामने पूजा होती है। तो ऐसे और कोई नहीं है सारे कल्प में हमसे अधिक भाग्यवान, इस संसार में और कोई नहीं है। आगे वाली जो संडे की मुरली है उसमें बाबा ने बहुत सुंदर कहा है भाग्य की निशानियां क्या क्या होती है। जैसे ब्राह्मणों की कौन सी जन्म पत्री है, उसमें ग्रह कौन से, नक्षत्र कौन से, तिथि कौन सी, तारीख कौन सी, राशि कौन सी, संबंध कौन से, संपत्ति कौन सी ब्राह्मणों की, वो सब कुछ, समय कौन सा, वो सब कुछ बताया है। दूसरा सदा खुश, ये जो सदा खुश वाली बात है वो है जो कि भगवान जब भाग्य बांट रहा तो ब्राह्मण क्या कर रहे थे या हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक तो जाग रहे थे, दूसरा
जगा रहे,
सबसे आगे हम थे और सबसे ज्यादा झोली किसने भरी थी, हमने भरी थी। बाकी तो जिन्होंने भरी नहीं, जो सो रहे थे, जिन्होंने आधा भरा पूरा नहीं भरा, वो चंद्रवंशी में गए। तो सदा खुश, बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है। और लास्ट में इसमें कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एवर रेडी, सदा रेडी, अंतिम घड़ी। कल सुबह का जैसे बाबा दादियों को कहते थे ना कि अगली दिवाली नहीं देखेंगे, तो यहाँ तो हम ये सोचे कि हमारा आज का दिन ही अंतिम दिन है, कल का सूरज हम ना देखें, ऐसा ऐसी हमारी स्थिति हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एवर रेडी। कल भी कहा था चोला कैसा हो हमारा, लूज, टाइट ना हो, सख्त ना हो। एक वायदा याद रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि हमें जाना है घर, हमें जाना है सतयुग। रसिया बंधी हुई ना हो, छुटी हुई हो। उपराम, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात उपराम। आज वरदान में भी बाबा ने कहा है प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात परवृत्ति, परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्थिति। तो ये उपराम सब कुछ कर रहे, कर नहीं रहे जैसे उनके लिए खेल है, खेल समझ रहे, उसमें फंस नहीं रहे, उसका वो जैसे मनोरंजन का एक साधन है। तो उपराम, दूसरा क्या कहा, निर्व्यर्थ स्थिति। जब ज्ञान, जैसे पूर्णिमा ने कहा, जब हम ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं तो जहां समर्थ है, समर्थ क्या है, संसार में ज्ञान, इस ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई ज्ञान है नहीं संसार। तो जहां समर्थ का चिंतन होता रहता है व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जहां प्रकाश आ जाता है वहां पर अंधकार है ही नहीं। तो हमारा जो प्रयत्न है अब तक का कि अंधकार को भगाओ तलवार से, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब प्रकाश को ला लो तो अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाएगा। तो निरंतर ज्ञान चिंतन अगर मन में है, मुरलियों का चिंतन, अव्यक्त वाणियों का चिंतन, तो व्यर्थ स्वतः ही नहीं आता। तो स्वतः ही स्थिति हमारी ऊपर, सदा खुश जो बाबा कहते हैं, वो स्वतः हो जाता है बिना कोई प्रयास के। यही स्थिति है व्यर्थ से मेहनत न करना, ये जो बाबा जिसको कहते हैं ना, ज्ञान चिंतन स्वतः चलता रहा तो मेहनत है ही। निर्व्यर्थ, निर्विकल्प और उपराम, एवर रेडी, ये सारी परिभाषा किसकी है, तीव्र पुरुषार्थ की। उपराम क्यों, आज के मुरली में कहा है कि क्या मुर्दो, ये मुर्दों की दुनिया है, मुर्दों से क्या दिल लगाना, क्या ये शमशान से क्या दिल लगाना है, मुर्दों के लिए भी कहा, शमशान के लिए भी कहा, शादी के लिए भी कहा, गटर बर्बादी। तो तुमको निरंतर चिंतन में रहना, निरंतर याद में रहना, आज तो रात में याद करने के लिए भी कहा है, रात की याद दिन में काम आएगी। तो दिन और रात कितने बजे, क्या कहा था आपने, नींद ही नहीं आई तो ज्ञान चिंतन अगर होता रहे, मुरली सदा वो जो गीत कहा ना बाबा ने, ये भाग्य का गीत सदा बजता रहे, कभी मध्यम ना हो जाए, कभी स्लो ना हो जाए, ऐसा नहीं कभी तेज कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत याद है बहुत ऊपर उठ रहे, कभी एकदम ही नीचे, एक रस स्थिति। तो निरंतर ज्ञान का चिंतन, निरंतर ज्ञान चिंतन रहा तो निरंतर योग की स्थिति स्वतः ही रहेगी, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का पहला सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। तो आज स्मरण रखना इस बात का, अपने भाग्य की बात है एक, दूसरा खुशी की बात, और तीसरा तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ करता है तो उपराम, एवर घड़ी, हर घड़ी, अंतिम घड़ी, निर्व्यर्थ, निर्संकल्प, निर्विकल्प, धोखा खाने वाले ने, सदा सूर्यवंशी, और भाग्य भगवान अभी बांट रहा है तो पूर्ण भाग्य लेना है। भाग्य जब बट रहा है तो हम सबसे पहली लाइन में हम हैं, बाकी जो सो रहे हैं उनको सोने दो, पर हम सबसे आगे और सबसे ज्यादा भाग्य हमें लेना है।
झगड़े नहीं लेना ऐसे, तब तक हम नहीं ले ले।
जितना लेना चाहो उतना हम ले सकते हैं। तो ये सारी बातें स्मरण में रखना है। तो कल किसका है? डॉक्टर हिना का। और माता जी कहाँ है? परसों है उनका।
माता जी कल बोल रहे थे कहीं जाना।
हफ्ता में एक एक दिन रखो।
हाँ ठीक
है,
हफ्ता में एक एक दिन, ठीक है।
हाँ तो हफ्ता में एक ही दिन, एक का एक ही दिन आएगा,
एक ही दिन आएगा।
मैंने क्या बोल रहा हूँ? आप तुम 6 दिन करे और हफ्ते।
अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सब चिंतन
का,
चिंतन से ही आत्मा शक्तिशाली होती है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने का एकमात्र और सबसे सहज साधन है चिंतन, निरंतर चिंतन होता रहे। यहाँ जो जो पढ़ना है उसको पहले एक बार पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर उसके ऊपर और चिंतन करो, और चिंतन करो, फिर अमृत वेले के बाद और थोड़ा चिंतन करो, और किसी के साथ शेयर भी कर सकते, किसी से पूछ भी सकते हैं, या कुछ और दूसरी अव्यक्तवाणियां भी पढ़ सकते हैं। जो अव्यक्तवाणी, अगर किताब लेकर नहीं घूमना है तो उसकी केवल उस पेज की, उस ग्रुप की प्रिंट आउट और वो जेब में, ताकि दिन भर देखते रहे। क्योंकि हर बार ये कोई ऐसी किताब नहीं है, ये अव्यक्तवाणियां ऐसी है कि जितनी बार उसको पढ़ो वो नया कुछ पकड़ में आता है। हर बार पहली बार पढ़ा वो पकड़ में नहीं आई, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ टाइम, जो हमने 5 बार पढ़ी पर 5 बार वो बात कभी स्ट्राइक ही नहीं हुई, वो 5वीं बार पता चलेगा कि ये नई पॉइंट थी वहां पर। तो ये ऐसा खजाना है अखूट, ठीक है। तो ओम शांति।
समझते हैं।